जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, सतत केवल ज्ञान पाने, सतत केवल ज्ञान पाने। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछले कई दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने की बात पर विचार कर रहे हैं। जब तक दृष्टि निर्मल नहीं होती तब तक अपना जीवन अच्छा बनाने की ललक भी पैदा नहीं होती और सही दिशा में हम चलकर अपने जीवन को अच्छा भी नहीं बना पाते। और यदि दृष्टि की निर्मलता प्राप्त हो जाए, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, तो जो भी ज्ञान हमारे पास है वो सब समीचीन हो जाता है और हम अपने विवेक के द्वारा क्या हेय है, क्या उपादेय है, कौन सा मार्ग मुझे अपने कल्याण के लिए स्वीकार करने योग्य है, ये समझने लगते हैं और एक निश्चित दिशा में चल करके हम अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं। आचार्य भगवंतों ने दृष्टि की निर्मलता और समीचीन ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण माना। यदि हमारे भीतर दृष्टि की निर्मलता और समीचीन ज्ञान है तो जो भी हमारी क्रियाएं हैं, जो भी हम करते हैं सुबह से शाम तक, वो सब समीचीन हो जाता है। और यदि दृष्टि समीचीन नहीं है, मन के भीतर विवेक नहीं है, तो कुछ भी क्यों ना करें वो अपने जीवन को सार्थक नहीं कर पाता, अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाता। मोह तिमराप हरणी दनशन लाभात अवाप्त संज्ञाना रागद्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। मोह का अंधेरा हट जाने के बाद हम सबके जीवन में आचार्य भगवंत कहते हैं कि स्पष्ट रास्ता दिखाई देने लगता है। हमें अपने ठीक रास्ते का ज्ञान हो जाता है। यदि मोह का अंधेरा हट जाए तो जैसे कि कमरे में बहुत अंधेरा हो और अपन बाहर निकलना चाहते हैं पर दरवाजा नहीं मिल रहा, दिख ही नहीं रहा, इतना अंधेरा है, कहां से निकले। और अचानक हल्की सी लाइट, भले ही वो क्षण भर के बाद लुप्त हो जाए, अगर प्रकट होती है तो उतने में हम देख लेते हैं कि कहां से दरवाजा है, और फिर अंधेरा भी हो जाए तब भी हम पेट्रोल करके और दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और बाहर निकलने के लिए रास्ता प्राप्त कर लेते हैं। इतना महत्व है अंधेरे में जैसे रोशनी का है, वैसे ही इस अज्ञान के और मोह के अंधेरे में समीचीन दृष्टि सम्यक ज्ञान का महत्व है। और जैसे ही अपने को दृष्टि प्राप्त होती है, विवेक प्राप्त होता है, छटपटाहट मचती है भीतर में, जैसे किसी को मालूम पड़ जाए कि दरवाजा तो निकलने के लिए कमरे में इस जगह पर है, तो फिर कोई कहे निकल जाना, नहीं, वर्षों से मैं इस कमरे में बंद था, अब मुझे ज्ञात हुआ यहां से निकलने का रास्ता, मुझे दृष्टि मिल गई, मुझे विवेक जागृत हो गया, अब मैं रुकूं कैसे, बताने वाले ने कृपा करके मुझे बता दिया कि दरवाजा ये है, अब मुझे प्रयास करना चाहिए। दृष्टि की निर्मलता और विवेक हासिल होते ही हमारे भीतर अपने कल्याण के लिए, इस संसार के बंधन को तोड़कर मुक्त होने के लिए लालसा उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। बहुत सहज सी प्रक्रिया है, हमारा व्यवहार बदले बिना नहीं रहता। अगर व्यवहार नहीं बदला तो हमें एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि हमारी दृष्टि की निर्मलता और विवेक सही है या नहीं है। कसौटी है, दृष्टि की निर्मलता और विवेक अगर प्राप्त हो गया और व्यवहार न बदले, ऐसा संभव ही नहीं है। एक बार एक बच्चे को, जो धोबी का बेटा था, अपने धोबी को काम होने की वजह से उसने बेटे से कहा कि जाओ तुम गधे पर कपड़े धुले हुए लेकर के घर पहुंचो। उसने कहा बहुत अच्छा, छोटा सा तो था, खेलने के दिन थे, लेकिन काम करना है। पिता ने कहा तो पिता ने गधे पर धुले हुए वस्त्र लाद दिए और बेटा साथ में हो गया, पर बेटे का चित्त तो खेल में था, यहां वहां देखते चल रहा था और अचानक उसे एक चमकदार पत्थर दिख गया, वो उसी से खेलने लगा। उसने कहा बड़ा प्यारा पत्थर है, फेंक देता फिर दौड़ करके उठा लाता। पत्थर के साथ खेलते खेलते अचानक एक पत्थरों के रत्नों के पारखी की दृष्टि उस पर पड़ गई कि इस बच्चे के हाथ में जो पत्थर का टुकड़ा है वो इसे भले ही चमकीला पत्थर समझ रहा है, पर तो है बहुत बेशकीमती। और उस बेटे से जाकर के कहा कि तुम जिस चमकीले पत्थर से खेल रहे हो वो हीरा है। तो क्या हुआ हीरा है तो? अब उसे तो ज्ञान ही नहीं है कि हीरा है तो क्या हुआ। बोले बहुत कीमती है। बोले कीमती है? उसने कभी इकट्ठे एक रुपया देखा नहीं था। उसने कहा इतना कीमती है कि एक रुपये बराबर? उसने कहा नहीं, कई एक रुपये के बराबर है। अब इतना सुनते ही जोहरी से वो जो पत्थर फेंक करके उठाने के लिए दौड़ता था और यही उसका खेल था, अब पूछो उससे खेलेगा इस पत्थर से? अब तो उसने मुट्ठी में उस पत्थर को दबा लिया है और पॉकेट में डाल लिया है कि करवट ना हो जाए, कीमती है। ठीक ऐसे ही जिसे दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसे विवेक प्राप्त हो जाता है, वो अपने इस जीवन को, इन सांसों को यहां वहां व्यर्थ फेंक करके उनसे खेल नहीं खेलता है। बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन में व्रत नियम अंगीकार करके अनुशासित जीवन जीने के लिए उत्साहित हो जाता है। राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, जो सज्जन पुरुष हैं वे राग द्वेष की अंतरंग में निवृत्ति के लिए या राग द्वेष की अंतरंग से निवृत्ति होने पर आचरण ग्रहण करते हैं। दोनों तरह की वर्णन करने की पद्धतियां हैं। एक मत पकड़ लेना कि जब राग द्वेष मिट दे सो अपने आप चारित्र हो जाए, झगड़ा में नहीं पड़ना। राग द्वेष मिटाने के लिए आचरण ग्रहण करता है बाह्य में। आचरण दो प्रकार का होता है, एक बाह्य आचरण और एक अंतरंग आचरण। अंतरंग में वीतरागता प्राप्त करने के लिए मैंने वाही में जो हिंसा आदि पांच पाप हैं उनके त्याग रूप चारित्र अंगीकार किया। ये दृष्टि जिसके पास सम्यक दर्शन है, जिसके पास आत्मज्ञान है, उसे प्राप्त होती है। वरना तो अपन बाहर से शुरू करें कि भीतर से शुरू करें, इसी उलझन में बात बहस कर लेते हैं। भैया बहस करने के लिए तो ज्ञान अपने पास है, लेकिन अपने जीवन का हिसाब सुलझाने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। पांच लोगों के बीच गुड़ के स्वाद को लेकर के कि गुड़ मीठा होता, कितना मीठा होता, इस बात पे बहस शुरू हो गई। और गुड़ का इतना सा टुकड़ा थाली में रखे हुए पांच लोग उसको घेर करके बैठे हैं, सब इस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि इतना मीठा है। वो कह रहा है नहीं जनाब इतना मीठा है, सब बहस कर रहे हैं। एक खड़ा हुआ चुपचाप देख रहा है, चार लोग बहस कर रहे हैं। उसने ज्यादा समय न गंवाते हुए उठा करके सीधा गुड़ का वो टुकड़ा मुंह में खाया और कहा कि तुम करो बहस, हमें मालूम कि तुम मीठे हो। आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान हो जाने के बाद बंधन से मुक्त होने के लिए क्या साधन अपनाए जा सकते हैं, उन साधनों को अपनाने की ललक यदि भीतर में नहीं है तो भी अपने को प्राप्त करना होगा ऐसी दृष्टि और ऐसा ज्ञान जिससे कि ललक उत्पन्न हो अपने जीवन के कल्याण की। व्यक्ति वही आचरण को अंगीकार करने से पहले सोचे कि काहे के लिए अंगीकार कर रहा हूं। मैं अंतरंग की वीतरागता के लिए, राग द्वेष नष्ट करने के लिए कर रहा हूं। ऐसा सोच करके वाही आचरण को अंगीकार करे तो उसका वाही आचरण का अंगीकार करना भी सार्थक है। और कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं तो जब भीतर में राग द्वेष का अभाव कर लूंगा तो अपने आप चारित्र हो जाएगा, हालांकि चारित्र का आती है कि जितनी जितनी कषाय जिसकी घट गई उतना उतना चारित्र प्रकट हो गया। अनंतानुबंधी कषाय के चले जाने पर सम्यक प्राचरण चारित्र, अप्रत्याख्यान कषाय के चले जाने पर देश चारित्र, और सकल संयम या सकल चारित्र तो प्रत्याख्यान कषाय के जाने पर प्रकट होता है अंतरंग में। लेकिन वाणी में सदाचार पूर्वक अपना जीवन जीना यह सम्यक चरण चारित्र के लिए आवश्यक है। देश चारित्र अंगीकार करने के लिए वाही में पांच अनुव्रत धारण करना वो साधन है जिससे कि मैं अपने अंतरंग में उस अप्रत्याख्यान कषाय जो बैठी है उसका क्षय कर सकूं और सकल चारित्र अंगीकार करने के लिए बाह्य में महाव्रतों को अंगीकार करता है ताकि मेरे प्रत्याख्यान कषाय नष्ट हो और मुझे सकल चारित्र या संयमाचरण चारित्र प्राप्त हो, तभी तो मैं समस्त मोह का क्षय करके स्वरूपाचरण चारित्र जो कि साक्षात मोक्ष का कारण है उसे प्राप्त कर सकूंगा, जो समस्त मोह के और कषाय के अभाव में प्रकट होने वाली स्थिति है। ऐसे चारित्र को क्रम क्रम से अंगीकार करने के लिए आचार्य भगवंतों ने उपाय बताए हैं, साधन बताए हैं। उन साधन को ही अपन साध समझ के ना करें, उन साधन से अपने साध तक पहुंचने का भाव अपने भीतर होना चाहिए। अलग अलग पद्धतियां आचार्य भगवंतों ने आचरण को ग्रहण करने की बताई हैं। असुहादो विनिवित्ति सुहे पवित्ति अजान चारित्रम, चारित्र उसे ही कहेंगे जो अशुभ से बच करके अपन शुभ में लग जाते हैं। ब्रह्म योग की अपेक्षा से नहीं है, न करना योग की अपेक्षा से, ये चारित्र चरणान योग की अपेक्षा से है। लेकिन करणान योग कहेगा कि नहीं, जब तक कषायों का अभाव नहीं होगा तब तक चारित्र उपलब्ध नहीं होगा, तुम तो कषायों का अभाव करो। हम तभी चारित्रवान मानेंगे, लेकिन चरणान योग वाला तो कहेगा कि देश व्रत लिए हो, बहुत बहुत धन्यवाद, पीठ थपथपाते तुम्हारी, तुम तो चारित्रवान। यही है। द्रव्यान योग कहेगा कि चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसु समोत्तिमुद्दिष्टो, मोहको विहीनो परिणामो उत्पन्नो हुसमो। अरे भाई, चारित्र ही धर्म है, और चारित्र है क्या चीज? अंतरंग का समता परिणाम ही चारित्र है। लो, अभी तो कह रहे थे कि अशुभ से बच करके शुभ में लगना चाहिए, ये चारित्र है। समस्त कषायों का भाव होने का नाम चारित्र है, और वे तो तीसरी बात बता रहे कि समता परिणाम रखो, जो ही चारित्र है। झगड़ा करने के नहीं है, उलझने के नहीं है, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार है। मैं पहले अशुभ पदार्थों से बच करके, अशुभ भावों से बच करके शुभ करूं, उसमें लगूं, तब तो मेरे लिए धीरे धीरे शुभ अशुभ के बीच, सुख दुख के बीच, हर्ष विषाद से बच करके समता भाव आएगा। और जब मेरे भीतर समता भाव आएगा, वितराग भाव आएगा, तब तो मेरे कषायों का क्षय उपशम उपशम होगा। तब मुझे करणान योग के अनुसार जो अंतरंग में चारित्र है वो प्राप्त होगा। ये क्रम है, ये भूमिका है। आचार्य भगवंतों ने अपन पे कृपा करके किस तरह से क्रम क्रम से अपने जीवन में वीतरागता आवे, कैसे अपने जीवन में चारित्र आवे, इसका उपाय बता दिया। बाह्य चारित्र को भी उतना ही महत्व जितना कि अंतरंग चारित्र को महत्व। बाह्य चारित्र अगर अंतरंग चारित्र के लिए निमित्त बनाया जाता है तो महत्वपूर्ण है, वरना तो बाह्य चारित्र बहुत लोग पालन करते हैं। लेकिन अंतरंग में अगर आत्मज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो वो कार्यकारी नहीं हो पाएगा, वो निर्जरा नहीं कर पाएगा। सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, अगर दृष्टि की निर्मलता से संपन्न है तो ज्ञान के साथ साथ अत्यंत वैराग्य से भर करके अपना आचरण करेगा। ग्यारह स्थान बताए हैं तत्वार सूत्र में कि कैसे कर्मों की निर्जरा होती है। क्रम क्रम से अपन विचार करें कि मुझे करना तो वही है, इस बंधन से मुक्त होना है तो मुझे कर्मों की निर्जरा करनी होगी, राग द्वेष को हटाना होगा। उसके लिए ये साधन है बाह्य चारित्र, वो भी महत्वपूर्ण है। एक मिथ्या दृष्टि से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा सम्यक दर्शन के प्राप्त होने पर जीव कर लेता है। एक सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर पर जितनी निर्जरा करता है जीव उससे असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा सम्यक दर्शन के साथ देश व्रत अंगीकार करके कर लेता है। देश व्रति से असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा महाव्रति कर लेता है। क्रम क्रम से अगर सम्यक दर्शन के साथ कोई बाह्य चारित्र को अंगीकार करे तो बाह्य चारित्र भी उसके कर्मों की निर्जरा में कारण बनता है। ऐसे बाह्य चारित्र को भी सच्ची श्रद्धा और ज्ञान के साथ उपयोगी कहा है, ग्रहण करने के लिए कहा है। बाह्य चारित्र से कुछ नहीं होता, जहां ये कहा गया वहां पर समझना कि ऐसे बाह्य चारित्र की चर्चा है जो सम्यक दर्शन से रहित और आत्मज्ञान से शून्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। अज्ञानी जीव के तप को बाल तप कहते हैं, ठीक इसी तरह से बाह्य चारित्र को अनुपयोगी सार्थक नहीं है ऐसा जहां आचार्यों ने कहा वहां हमारे कान पकड़कर हमें डांटने के लिए कहा कि क्या कर रहे भैया, इतना बढ़िया तो तुमने व्रत नियम लिया और अंतरंग में श्रद्धा भाव और विवेक नहीं है तो तुम्हारे इस आचरण का क्या अर्थ होगा, ऐसा कह करके और समझाने की कोशिश की है। निंदा नहीं की गई बाह्य आचरण की, एक कदम आगे बढ़ो। बाह्य चारित्र भी कई बार अंतरंग के विचारों को अच्छा बनाने में कारण बन जाता है। एक भिखारी था, 3 दिन से भूखा, उसको भोजन की बड़ी लालसा थी कि मिल जा तो कहूं। वो मांगता मांगता लोगों के घरों से और कहां पहुंच गया, उपाश्रय में, जहां की साधु जनों के लिए भोजन की व्यवस्था थी। अच्छी बात, उसने वहां मांगा तो वहां जो व्यक्ति था उसने कहा कि यहां तो सिर्फ साधुओं को दिया जाता है, भिखारी को नहीं। तो भिखारी के मन में आया कि साधु बने से अगर भोजन मिल जाते तो कहां हार जाए बनी में। देखो तो उसने फौरन, भूखा आदमी था, उसने कहा बनने में एक दिन में क्या फर्क पड़ता, भोजन कर लेंगे फिर छोड़ देंगे, ये विचार उसके मन में। उसने साधु का वेश धारण कर लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिए और कहा कि अब तो दो मुझे भोजन। उसने कहा बहुत अच्छा, साधुओं को दिया जाता है, तुम साधु बने हो तो तुम्हें भी भोजन मिलेगा, बैठो। उसने बढ़िया से खूब, भूखा तो था ही, भोजन किया। अब विवेक तो था नहीं, किस प्रकार मैं भोजन करूं, और खाते चला गया खाते चला गया, पानी तो पीने का हिसाब ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहा, पेट भर गया। कुछ कि 3 दिन से भूखे थे, पेट भर भोजन मिला, लेट गए जनाब, लेटे देर नहीं हुई, 10 मिनट हुए थे और पेट में दर्द शुरू हो गया, तड़पना शुरू हो गया, मछली जैसे पानी से निकाल दिए जाने पर जमीन पर तड़पती है ऐसे ही अत्यंत वेदना से वो तड़पने लगा। आसपास जो भी आश्रम में साधु जन थे वो सब उसके पास इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ, भोजन में कुछ खा तो नहीं लिया ऐसा कि जो इतनी तकलीफ हो गई, इतनी वेदना हो गई। सब उसकी सेवा में लग गए, कोई पैर दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, कोई सिर पर ठंडी पट्टी रख रहा है। बड़े बड़े लोग जो साधुओं की सेवा के लिए वहां उपस्थित थे वो सब भी उसे साधु जान करके सेवा करने लगे। अब तकलीफ तो एक तरफ, अब भीतर मन विचार आ रहा है कि देखो तो हम क्षण भर को भोजन के लिए साधु बने और जो कि कष्ट साधुपने के प्रति श्रद्धान जागृत होने लगा और मन में ये विचार आया कि इस व्याधि से और पीड़ा से अगर मैं मुक्त हो गया तो मैं सचमुच साधु बनूंगा। वो व्याधि क्या थी भैया? ज्यादा खा लो तो शुरू से पेट पीड़ा रहा, अब जैसे ही थोड़ी देर घंटा दो घंटा चार घंटा उसका शमन हुआ तो दर्द ठीक हो गया। जैसे ही दर्द ठीक हुआ उसने तो संकल्प कर लिया था कि मैं तो अभी भोजन के करने के लिए अकेला साधु बना था, अब तो सचमुच में मैं अपने आत्म कल्याण के लिए साधु बनूंगा। और इतने मात्र से ही, और उसने वास्तव में चारित्र अंगीकार कर दिया। बताओ, बाहर में अज्ञानता पूर्वक भी अगर अपन ने थोड़ा सा साधु का वेश भी धारण किया है, चारित्र भी ग्रहण किया है, तो भैया संभलने में देर नहीं लगती। किसी भी क्षण अपन संभल सकते हैं। बाह्य चारित्र भी इसी समाज के लिए है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, अहंकार करने के लिए नहीं है कि मैं तो त्यागी व्रति हूं मेरा सम्मान होना चाहिए। नहीं, मैंने व्रत नियम अंगीकार किए, मैंने चारित्र अंगीकार किया, इससे बड़ा कोई सम्मान हो सकता है मेरी आत्मा का? ऐसा विचार करके और अपने अंतरंग में निर्मलता लाने का प्रयास करता है, समता की साधना करता है, तो उसका बाह्य चारित्र भी सार्थक हो जाता है। भैया, जो भी व्रत नियम अपन अंगीकार करें, बाह्य में चारित्र अंगीकार करें, काहे के लिए? अशुभ से बचने के लिए मैंने शुभ कार्य अंगीकार किए हैं, अब मैं अपने शुद्ध आत्मा का भी उपाय करूं। ये शुभ आचरण जो मैंने किया है काहे के लिए किया है? अपने परिणामों की निर्मलता के लिए, अपने अंतरंग की वितरागता और समता भाव पाने के लिए ही तो किया है। ऐसा विचार करके और अपन निरंतर उस समता भाव को धारण करने का प्रयास करें, त्यागी वृत्ति को, समता भाव की साधना, अपने त्याग किए हुए पदार्थों से अनाशक्त होकर के करनी चाहिए। भैया, जितनी अनाशक्ति उतना त्याग, आशक्ति पूर्वक अगर त्याग किया हुआ हो तो उस पदार्थ के त्याग करने के बाद आशक्ति का भी त्याग करना चाहिए। आशक्ति का अगर त्याग हो गया तो सचमुच में वो त्याग हमारे भीतर चारित्र जो वितराग रूप है, समता रूप है, उसकी प्राप्ति में कारण बन जाएगा। सन 1980 में चुल्लक दीक्षा होने के बाद जब द्रोणागिरि से वापिस सागर की तरफ आचार्य महाराज संघ सहित विहार कर रहे थे, तब वहां पर बंडा वाले तो बैठे ही हैं। बंडा में जाकर के रात्रि रुके। अब बताओ, वहां पर उन्होंने बढ़िया व्यवस्था की रुकने के लिए, सोची कि महाराज को अच्छे कमरा में रोको। सो बढ़िया रोका। ठंड के दिन थे, भैया भक्ति के लिए खूब लोगों ने 10-10:30 बजे तक, जब तक सब महाराजों की भैया वृत्ति हुई, खूब लोगों ने रुचि ली। अब भैया एक तो चल करके आए थे, सो पता नहीं लगा ठंड का, और सब जने भैया वृत्ति करते रहे, सो पता नहीं लगा ठंड का। लेकिन जब सब चले गए तब धीरे धीरे रात्रि में शीत तो थी और उसका प्रभाव जान पड़ा कि शीत तो बहुत लग रही। उस कमरे की विशेषता ये थी, साधक तो उसको विशेषता ही कहे, उस कमरे के दरवाजे तो बहुत थे, उनमें खिड़कियां और कांच भी लगे थे, लेकिन हवा बहुत आती थी और ऊपर खप्पर थे। पुराने जमाने की बात है, अब तो नौ बजे सब
ऊपर स्लैश हो गया होगा, उसमें तो उसमें से भी हवा आ रही, अब हवा के आने से तो वातावरण ठंडा और अधिक हो जाएगा, और एक एक चिटाई मिलती थी उस समय, ऐसा नहीं कि जहां महाराज जी पहुंचे उतना ही पाटा ले आए, नीचे नहीं बैठे थे हम धरती पे, हमारे महाराज हमारे त्याग हम का सेवा कर पे बताओ, साधना नहीं कर देंगे, सेवा करेंगे आपकी तो हम बढ़िया, सेवा धन संपत्ति से नहीं की जाती है, सेवा सेवा तो साधना में अनुकूलता उत्पन्न करने से होती है। अपन तो ये सोचते हैं कि चतुर्मास में महाराज को अच्छी से अच्छी सुविधाएं जुटाते, हमारे पास तो बहुत धन पैसा है, सो भैया उस धन पैसे का अपने पास रखे रहो, सेवा करने के लिए उपयोग नहीं आ पाएगा, सेवा तो होगी उनके लिए धर्म ध्यान में अनुकूल वातावरण माध्यम से, जो भी अपना धर्म ध्यान कर रहे हैं उन सबको धर्म ध्यान के योग वातावरण मिले। एक एक चटाई मिली, क्या करें, लेट गए उसी को आदि बिछाकर उसी को ओढ़कर सब महाराज। अब रात के 12-1 बजे तब तो बहुत ठंडा होने लगा, अब अगर पैर की तरफ चटाई ओढ़े तो सिर से हवा लगे, और अगर सिर को ढके तो पैरों से खुला हुआ तो वहां से हवा आ रही, अब करो क्या करते, लेट रहे और चिटाई से देखते रहे कि कौन क्या कर रहा है, तो सब ये रहे कि सब रही हो भाई, देखो शरीर तो शरीर है। तब विचार आया, सबसे बड़े महाराज जी हैं समय सागर जी महाराज, उन्होंने शुरुआत की एकमात्र संघ में, उस समय मुनि महाराज जी वही थे आचार्य महाराज के अलावा, बाकी तो सब अलग छुलग जी थे, 11 महाराज थे, 1980 की बात है। तब उन्होंने दिमाग लगाया कि देखो ऐसे तो ठंड बहुत है, धर्म नहीं हो पाएगा, संकलेश ही होगा, क्या करें, बैठ जाए अपन और चिटाई ओढ़ लें तो कम से कम ऊपर से आएगी, नीचे से तो हवा नहीं आएगी। आइडिया बहुत अच्छा था, बैठ गए वो चिटाई ओढ़ करके कि थोड़ी थोड़ी हवा आएगी, ज्यादा होगा तो सिर ऐसा नीचे कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे, धर्म ध्यान तो होता रहेगा, संकेत तो नहीं होगा, नहीं तो हार ध्यान पीड़ा चिंतन ही होता है और कुछ नहीं होता। अब सबने देखा कि ये तो अच्छा आइडिया है, तो सबने फटाफट चिटाई ओढ़ ली और बैठ गए कि बैठे बैठे रात निकाल देंगे, और सवेरे भक्ति के लिए आचार्य महाराज के चरणों में बैठे तो आचार्य महाराज के चेहरे पर तो हमेशा की तरह जो प्रसन्नता थी वही दिख रही थी। उसे देख करके हम लोग भी जरा चुप रह गए थे, वैसे तो तकलीफ रात में बहुत रही, वो महाराज को तो हंसी आ रही, हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, और अपन तो तकलीफ में है, देखो ऐसी साधना होनी चाहिए। मन में ये विचार आया कि चाहे कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल अवस्था हो, मुझे तो उसे प्रसन्नता से सहन करना चाहिए, तभी कर्मों की निर्द्रा होगी, आचार्य महाराज ये संदेश दे रहे हैं। और क्षण भर के अंदर भक्ति के उपरांत आचार्य महाराज ने पूछ ही लिया कि क्यों, रात में ठंड तो बहुत थी, अब भक्ति अब का कायम तो सबने कहा कि हमारा बहुत थी ठंड लगी, हमारा लगी तो ठंड, क्या ध्यान आया, क्या ध्यान आया, उस ठंड से बचने का क्या उपाय सोचा मन में। महाराज आप पूछते हो तो इतना ही विचार आया कि एक चिटाई और होती तो अच्छे से बिछा लेती और एक ओढ़ लेती, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य महाराज ने बहुत बहुत आशीर्वाद किया और बहुत प्रशंसा करी कि चलो कम से कम चिटाई जो कि ग्रहण करने के लिए उपकरण के रूप में साधु ग्रहण करता है, योग्य है, उतना ही ख्याल आया। गद्दा, तकिया और पल्ली का तो ख्याल नहीं आया जिसका त्याग कर दिया। त्यागी हुई चीज का के प्रति अगर आसक्ति है तो वो त्याग सार्थक नहीं होगा। अपन भी देखें कि हमने जिन चीजों का त्याग किया है स्वेच्छा से, वे मेरे भीतर इतराज भाव ला पाएंगी जब उनके प्रति मेरे मन में छोड़ने के बाद आसक्ति तो नहीं जागृत होती। अगर होती है तो उसे जीतो, उसे जीतने का प्रयास करें, क्योंकि आसक्ति तो अशुभ है। मैंने तो शुभ का संकल्प ग्रहण किया था कि अशुभ से बच करके मैं अपने परिणामों को शुभ में लगाऊंगा, ऐसा आचरण करूंगा मन वाणी और शरीर से जिससे कि अशुभ से बच सकूं। भाई तभी अपने जीवन में और अपने कल्याण के लिए मार्ग मिल पाएगा, अपना कल्याण उस मार्ग पर चल करके अपन कर सकेंगे। एक छोटी सी घटना और सुनाता हूं जिससे कि हमारे अशुभ परिणाम से बच करके हम कैसे शुभ परिणाम में लगे और कैसे अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करें जो हमारा लक्ष्य है, ये निरंतर अपने मन में बना रहे। शुभ भी करना है काहे के लिए, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। शुभ साथ नहीं है, साधन है, ये स्पष्ट है। ये व्रत नियम जो भी मैंने अंगीकार किए हैं वो सिर्फ साधन है। एक पूजा करते सो चार कर नहीं सो बहुत धर्मात्मा होगा, इस धोखे में नहीं रहना। एक पूजा अच्छे से पूरी श्रद्धा से करी है तो धर्मात्मा है, वो चार बिना मन के करी है जबरदस्ती में तो कछु काम की नहीं आएंगे। कोई कर्मों की निर्जरा नहीं, थोड़ा सा पुण्य का बंद जरूर होगा क्योंकि आपने पांच पापों से बच करके भगवान की आराधना करी है मन वाणी और शरीर से, तो थोड़ा सा पुण्य तो होगा। लेकिन बिना श्रद्धा के और निरंतर घड़ी देखा तरह के कितने बज गए, हो जाती जल्दी फिर चले जाती, दोनों ने कही कि एक और कर लो स्वयं खड़े हो गए, ऐसा सोच रहे आप तो निरंतर चित्त में क्या धरा हुआ है संसार। और खड़े भगवान के सामने जो कि संसार से पार होने का उपदेश दे रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, अपन उस समय अपने आप को संबोधन करें कि क्या कर रहा हूं, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, पूरे भावना के साथ मैं अपने अनुष्ठान को करूं, ऐसा अपने भीतर भाव आवे। उसमें घटना में एक युवक अपने आत्म कल्याण की बात जानने के लिए साधु महाराज के पास पहुंचा कि महाराज हमें कुछ बताओ, हमारे जीवन का कल्याण हो, हमारा जीवन अच्छा बने। तो साधु जी ने कहा कि देखो उत्तर तो हम तुम्हें दे देंगे पर हमारे साथ में रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब आप उत्तर जब दोगे तो आपके साथ में, हमें तो उत्तर चाहिए, साथ में रहना पड़े तो ठीक है रह जाएंगे, और ये काम करना पड़ेगा। बताओ, उत्तर चाहिए सो काम भी करेंगे। काम इतना ही सा है कि वो जो सामने वृक्ष दिख रहा है तुम जा करके दिन भर में और उस वृक्ष का जितना उपद्रव कर सको, उस वृक्ष पर जितना संकट ला सको, पत्ते तोड़ो, गालियां दो, पत्थर फेंको, जो कर सको करो। जी भी अच्छा है, उसने सोचा युवक ने कि बेकार फंस गए साधु बाबा के पास में, ये सो उपद्रव को काम बता दो। फिर भी अब कह रहे हैं कि जब आप कल्याण की बात बताएंगे तो करेंगे। थे भाई गए, पत्तियां तोड़ी, डालें तोड़ी, हिलाया डुलाया, गालियां दी, पत्थर फेंके, जितना हो सकता था वो सब वृक्ष का किया। शाम को वापस लौट करके साधु को समाचार दिया कि आपके कहे अनुसार जो आपने कहा था हमने सब किया, ठीक है सो जाओ। सो गया। सुबह उठ करके पूछा कि रात कैसी गुजरी, अच्छी नहीं, नींद नहीं आई, वृक्ष ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो मैंने उसे इतना तोड़ फोड़ की गालियां दी, उसका इतना अपकार किया, अच्छा नहीं लगा, मेरा मन अच्छा नहीं है। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, तुमसे गलती हो गई, अपराध बोध हो रहा है, गिल्टी फील कर रहे हो, तो जाओ कन्फेस करके आओ, क्षमा मांग के आओ कि मेरे से गलती हुई, संभालो वृक्ष को, पानी दो उसमें। जाकर के दूसरे दिन यही काम किया, क्षमा मांगी कि कल हमने आपको विकार में कष्ट पहुंचाया, पत्तों को भी झाड़ा पहुंचा, संहारा, पानी डाला, दिन भर वहीं गुजारी, अत्यंत प्रसन्न भाव से शाम को लौटा। बाबा जी ने पूछा कि कैसा लग रहा है, आज तो अच्छा है, तो सो विश्राम करो, थक गए हो। सो गया वो, तीसरे दिन सुबह उठा, बाबा जी ने कहा कि जाओ, मैंने जवाब तुम्हें दे दिया। अरे जवाब तो दो तक नहीं है, दो दिन अपनो काम करवाओ, बताओ कहे के जवाब दे दिया। तो बाबा जी से उसने पूछा कि बाबा जी अभी तो मैंने आपका किया हुआ दिया हुआ काम ही किया है, आपने मुझे जवाब तो दिया ही नहीं। बोले जवाब तो मैं दे चुका, पहले दिन जब तुमने अपने परिणाम आशुभ किए, बताओ मन के भीतर शांति मिली नहीं। महाराज जब तुमने अपने परिणाम शुभ किए, अच्छे किए, तब थोड़ा प्रसन्नता और अच्छा भाव मन के भीतर आया, नींद अच्छी लगी। हां महाराज शुभ करने पर मुझे अच्छा लगा, लेकिन विचार करो कि तुम्हारे उपद्रव करने पर या क्षमा मांगने पर वृक्ष ने कोई जवाब दिया नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो अपने चुपचाप समता पूर्वक हमने गालियां भी तो भी सुन ली, हमने क्षमा मांगी तो भी कुछ नहीं कहा उसने, बस इतना ही है जवाब। संसार में अशुभ करोगे या शुभ करोगे तो संसार सुख दुख और हर्ष विषाद ही मिलेंगे, और जैसे वृक्ष ने उस सुख दुख में समता भाव धारण करके सहन किया, ठीक है अज्ञानतावश सहन किया, लेकिन तुम ज्ञान पूर्वक सहन कर लोगे अगर सुख दुख को, तो अपने उस शुद्ध स्वरूप को, उस वीतराग चारित्र को प्राप्त कर सकते हो। यही अपने कल्याण के लिए मार्ग है भैया, यही तो अपन को आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कोशिश करो जितनी बन सके कि अशुभ से बच करके शुभ करने की कोशिश करो, लेकिन लक्ष्य को नहीं भूलो कि मेरा लक्ष्य तो वीतरागता है, मुझे तो राग द्वेष की निवृत्ति करनी है, इसलिए मैं चारित्र को बाहर में अंगीकार कर रहा हूं, अंतरंग में वीतरागता प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करने के लिए ऐसे विचार अपन के जीवन में बने, ऐसे भाव बने और अपना जीवन अच्छा बने। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। ए गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा।
कि प्रभु भजन और सत्संगति तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अगर हमने अपनी गृहस्थी बना ली, हमारे बेटे हैं और हमारे पास धन संपत्ति है और हम बहुत रईस आदमी हैं, ठीक है, ये तो कोई पाप करके भी कमा सकता है, लेकिन प्रभु भजन और सत्संगति ये दोनों चीजें बहुत पुण्य के अर्जन से होती, बहुत प्रयत्न साथ, शायद इसीलिए कहना पड़ा। और आज ये स्थिति बिल्कुल दिखाई पड़ती है कि तमाम प्रगति के बावजूद भी हम अपने भीतर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। हमें इस बारे में जरूर से विचार करना चाहिए और इस बारे में विचार हम यहीं बैठ के करते हैं। तीन बातों पर विचार हम आज कर लें, संभव है कि उन तीन चीजों के माध्यम से हमारे जीवन में अभी के अभी मौजूदा स्थिति में कोई परिवर्तन होना शुरू हो जाए, क्योंकि जब भी होगा ऐसे ही शुरू होगा, हमें ही प्रयत्न करके शुरू करना पड़ेगा। और एट द मोमेंट ऐसा नहीं है कि मैं बाद में करूंगा, जिस क्षण तैयारी हो जाए उसी क्षण हमें करना पड़े। पहली चीज मैं सोचता हूं कि हम अपने अंतरंग को जानने के लिए अगर गौर से देखें तो अपनी प्रतिक्रियाओं को देखें तो शायद हमें अपने अंतरंग की खबर लग जाएगी। वैसे तो अंतरंग हमारा जगत पकड़ में आता नहीं, हम गुस्सा भी कर लेते हैं पर पकड़ में कहां आता है, कर बैठते हैं तब पकड़ में आता है। पहले से अगर मालूम पड़ जाए तब तो बहुत आसान हो जाए काम, लेकिन जब कर लेते हैं तब मालूम पड़ता है। तो क्या करें, तो जरा गौर से देखें हर चीज की प्रतिक्रिया हम कैसी करते हैं। अगर देखा जाए तो यहां हम क्रिया कम करते हैं, प्रतिक्रिया ही दिन भर करते हैं। बहुत गौर से देखना, हम सब देखेंगे। जबकि लिखा तो है आइंस्टाइन ने कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की प्रतिक्रिया उतनी ही और उससे विपरीत होती है। लेकिन हमें गौर करना पड़ेगा कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में किन चीजों की क्या प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि हम कैसे हैं। हमने पिछले दिनों समझा था कि हम अपने संबंधों को जरा गौर से देखें कि हमारे संबंध चीजों के साथ, व्यक्ति के साथ और भगवान के साथ कैसे हैं, उससे मालूम पड़ जाएगा कि हम कैसे हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, अब हम ये देखें कि हमारी चीजों के प्रति, वस्तु के प्रति और व्यक्ति के प्रति, इन सब के प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है। बचपन में कोई छोटा सा कुत्ते का बच्चा दिख जाए, जब अपन छोटे थे तो क्या मन करता था, उसको थोड़ा सहलाएं, उसको थोड़ा थपथपाएं, बड़ा मजा आता था, हैं? ये एक प्रतिक्रिया होती थी। और आज आज कैसी प्रतिक्रिया होती है बड़े होने पर, वो तो नहीं होती है। बल्कि थोड़े बड़े होकर के अगर बाजू से कुत्ता निकलता हो तो धीरे से कह रहा हूं क्योंकि मैं इतने जोर से नहीं कह सकता, आप कर सकते हो उतने जोर से, लात मारने का मन है ना। प्रतिक्रिया बड़े होने पर क्या प्रतिक्रिया होती है छोटे से बच्चे के बाजू से निकलने पर, और बचपन में क्या मन करता है उसकी, उसके जरा देखें तो बाल कितने नरम नरम हैं, और जरा उसको थपथपा के देखें कैसा फील करता है, ये प्रतिक्रिया थी। और अब जो है बड़े होने पर ये प्रतिक्रिया, इसी से मालूम पड़ जाता है कि हमारे जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं। छोटी सी छोटी चीजों में हमारी प्रतिक्रिया। मैंने पिछले दिनों भी शायद ये बात आपको इशारा किया, दूसरे संदर्भ में की, दरवाजा आप किस तरह खोलते हैं और दरवाजा किस तरह बंद करते हैं, चीजों को उठाते और रखते किस तरह हैं, इससे मालूम पड़ेगा कि हम कितने और कैसे हैं। हम ठीक समय पर कोई काम करते हैं, हम ठीक समय पर खाना खाने पहुंच जाते हैं, हम जब बहुत भीड़ होती है तो जरा अपनी आवाज धीमी करके बात करते हैं, उद्देश्य क्या है, बहुत सारे लोग हैं, किसी को डिस्टर्ब ना हो, किसी को परेशानी ना हो। हम समय पर सारा काम करते हैं इसलिए क्योंकि पीछे आने वाले लोगों को हमें रास्ता देना है, अगर हम ही व्यस्त रह जाएंगे तो जो अपने समय से आने वाले हैं वो कैसे उसका लाभ ले पाएंगे। या कि हम ठीक समय पर भोजन करने इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि और भी लोगों को भोजन करना है, शाम को घर के लोग 6 बजे इसलिए भोजन कर लेते हैं क्योंकि घर के और सदस्यों को, ताकि 6:30 तक दिन में उनका भोजन हो जाए। ये हमारी प्रतिक्रियाएं हैं, इनसे मालूम पड़ेगा कि हम कैसे हैं। आपने कभी शायद इस चीज का गौर भी नहीं किया, नहीं करते हैं हम दूसरे से जो प्रतिक्रिया हमारे लिए मिलती है उस पर तो गौर करते हैं, हम दूसरे के प्रति जो प्रतिक्रिया करते हैं उसके लिए कभी हम ध्यान नहीं। बस आज पहली बात यही सीखनी है कि दिन भर में मैं किस तरह किस बात की क्या प्रतिक्रिया करता हूं, और मुझे वैसी ही प्रतिक्रिया कोई दूसरा मेरे प्रति करे तो कैसा लगेगा, बस ये हमारे समझ में आ जावे तो काम हो जाएगा, हम अपनी प्रतिक्रिया को जल्दी से बेहतर कर लेंगे। और जिसकी प्रतिक्रिया बेहतर हो गई है उसका जीवन बेहतर हुए बिना रहेगा। बहुत सीधी सी चीज क्या है, बेटा आया घूम फिर के आया है, हमारे मन की करके नहीं आया है, मन तो यही हो रहा है कि उसको चार कड़ी बातें सुनाए और सुना भी दी, यही प्रतिक्रिया हुई। सामान्य प्रतिक्रिया तो यही है, लेकिन समझें उसकी मजबूरी क्या थी, उसके संस्कार क्यों ऐसे पड़े कि वो ठीक समय पर मेरी आज्ञा के बिना और दूसरे काम करता क्यों है, समय पर क्यों नहीं आता, इसके बारे में विचार करें, कोई प्रतिक्रिया न करें। यह कि बेटा जब पिता उससे कोई बात कहता है या माँ उससे कोई बात कहती है तो पहले नंबर उसका मन करता है कि मना कर दूं, तो वो खुद अपने भीतर जरा सा सोचे कि मना करने से पहले जरा देख तो लूं कि बात क्या है, वरना संस्कार तो यही है कि बस कुछ कहा नहीं काम के लिए और पहले नंबर नहीं हमसे नहीं होता, फिर बाद में अच्छा बताओ क्या करना बाद में, लेकिन पहली प्रतिक्रिया क्या, फर्स्ट रिएक्शन क्या, उसी से मालूम पड़ जाएगा। वो बाद वाला तो आपका संभाला गया है, वो तो उस पर फिर कवर अवर लगा दिया है, थोड़ा अच्छा लगने लगा बाद का, लेकिन पहली फर्स्ट रिएक्शन क्या हो उसी से मालूम पड़ जाएगा कि आप किस स्टेज में बैठे हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी बात करना नहीं जानता, ना मैं कोई आत्मा वात्मा की बात आपको सुना रहा हूं, मैं आपको बहुत सामान्य सी चीज कह रहा हूं, वो जो आत्मा है जिस तक हमें पहुंचना है वो कैसी प्रतिक्रिया करती भीतर बैठी बैठी, उसी के बारे में अगर हम समझ जाएंगे तो हम उसे बेहतर बना लेंगे, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हम वॉच ही नहीं कर पाते हैं कि हम किस तरह फर्स्ट रिएक्शन, कोई भी चीज हमने देखी सबसे पहले हमारे मन में क्या आया, साइकोलॉजिस्ट से पूछो तो वो कहता है कि किसी भी चीज को व्यक्ति पहली दृष्टि में देखता है और उसके प्रति उसका आकर्षण इतना तीव्र होता है कि उस चीज को पाने के लिए वो सब कुछ करने अपने जीवन को भी मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है, फर्स्ट रिएक्शन है उसका, पहली दृष्टि। लेकिन बहुत समझदार होंगे वो लोग, अब मैं इसमें क्या रिएक्शन करूं, बहुत देर से सोच रहा हूं, हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, किसी के भी हों अपन ये मान के चल के समझ लो मेरे ही हैं, मैं क्या रिएक्शन करूं, इनको उठा करके बाहर बिठा दूं या कि मैं चाहूं तो इनके मन की कोई बात कह दूं ताकि उनका ध्यान मेरी तरफ चला जाए, ये रिएक्शन है। मन क्या कह रहा है एक क्षण के अंदर हमारे मन में क्या आता, बहुत कम हम लोग इंटरप्रिट करते हैं, पर रिएक्शन अपने भीतर हो चुकता है, बाद में हम संकोच बस कई चीजें नहीं कहते हैं, वो बात नहीं कह रहा हूं कि हम कहां कहते हैं, हमारे मन में आता है तो हम कहां कहते हैं, लेकिन वो जो मन में आ गया किसी भी चीज के प्रति रिएक्शन आ गया वो क्या चीज है। नरियल चढ़ाने वाला नरियल चढ़ाने आया है, आपके मन में क्या रिएक्शन हुआ है ये जरा गौर से देखना, और जब आप नरियल चढ़ाने आ रहे हैं तब आपके मन में क्या रिएक्शन हो रहा है तब आप देखें, आप सुन रहे हैं उस समय आपके मन में क्या चल रहा है। बहुत मुश्किल है, अगर इस तरह हम थोड़ा सा भी अलर्ट हो जाएं, थोड़ा सा भी अपने आप को वॉच करना शुरू कर दें, जीना बहुत मुश्किल हो जाए, जिस तरह जी रहे हैं वो तो फिर व्यर्थ ही मालूम पड़ेगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अरे ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई, मैं इधर बोलता चला जा रहा हूं और उधर मेरे भीतर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, आप आश्चर्य करेंगे, मैं खुद अपने आप को देख रहा हूं इन क्षणों में, आप भी देखिएगा मेरे साथ, आप सुन रहे हैं और उसके साथ आपके भीतर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं चल रही होंगी आजू बाजू का और सबका, कैसा लग रहा होगा। ये है हमारा जीवन, इसे हम भूले हुए हैं, हमने थोड़ा सा आपको याद दिला दिया तो सबको ऐसा लगने लगा कि हाँ सचमुच हम क्या करते हैं, हम किस तरह कोई भी अपने भीतर बात होती है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया करते हैं। दो ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, अच्छी प्रतिक्रिया और बुरी प्रतिक्रिया, इनको दो ही में बांट दें अपन, जैसे अपन कहते हैं सुख और दुख, दो ही फीलिंग होती है। अब दुख की वैरायटी बहुत है, अलग अलग ढंग का दुख होता है, सुख की वैरायटी बहुत है, अलग अलग ढंग का सुख होता है, लेकिन दो खाके में ही विभाजित कर सकते हैं कि एक तो अच्छी प्रतिक्रिया करते हैं और एक बुरी प्रतिक्रिया, एक पॉजिटिव रिएक्शन है और एक नेगेटिव रिएक्शन, एक ना में उत्तर देते हैं, एक के लिए हम राजी हो जाते हैं। एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूं, शायद कोई संदेश मिले, उन क्षणों में हमें देखना है कि हम क्या प्रतिक्रिया करते और उस घटना के दौरान उस व्यक्ति ने क्या प्रतिक्रिया की, इस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना। क्या हुआ, एक बार एक गरीब आदमी के घर में और एक चोर घुसा, रात 12 बजे घुसा। वो तो सोच रहा था कि सो गया होगा व्यक्ति, लेकिन गरीब आदमी था, भोजन भी ठीक से नहीं हुआ होगा, आराम से रात 12 बजे भी बैठे बैठे कुछ लिख रहा था, कुछ पढ़ रहा था। चोर ने सोचा कि ये तो बड़ी मुश्किल हुई। हाँ, चोर को मुश्किल होती दूसरे के जागने से, हाँ हमको भी मुश्किल होती है, हम सबको भी मुश्किल होती है जो हम कुछ गलत करना चाहते हैं और दूसरा कोई देख रहा होता है, नहीं होती मुश्किल? होती तो है, चोर को भी मुश्किल होती। हम चोर को तो ठीक नहीं समझते हैं, अपने आप को तो हम बहुत ठीक समझते हैं, भले ही हम नहीं अब किसी को मालूम पड़ने देते हैं, लेकिन जब गलत करने का मन होता है तो हम देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है, जबकि हम भूल जाते हैं कि हमें खुद ही देखना चाहिए, कोई और देखे या ना देखे मैं तो स्वयं देख ही रहा हूं। और उस चोर ने देखा कि ये तो मामला गड़बड़ है, अब कैसे चुराएं। फिर भी उसने थोड़ा सा आवाज बावाज की कि देखें इसका ध्यान जाता है कि नहीं, तो वो तो अपने पढ़ने में मशगूल था। उसने चोर ने इधर उधर झांक करके देखा कि क्या ले जाने लायक है, और कोई चीज उसके हाथ से गिर गई तो आवाज आ गई, और अब तो जो है उस गरीब आदमी ने देख ही लिया कि चोर आया है, वो और तल्लीनता से अपना काम करने लगा। ऐसे जैसे कि उसने गिरने की आवाज भी नहीं सुनी, चोर के आने की आवाज भी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, आया है, मन में उसके क्या चल रहा है, आया है बेचारा, कुछ मिल जाए यहां पर ठीक है, ढूंढ लेने दो शायद कुछ मिल जाए। अब जब वो आया है इतनी मेहनत करके, कहां कहां से आया होगा, कैसे लोगों की आंख बचा के आया होगा, और वो भीतर आ गया है, इतनी मेहनत से वो ढूंढ रहा है, ढूंढ